पृष्ठ संख्या 391, अध्याय 12, खेल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ प्ले। बालकों के जीवन में खेल का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। खेल से बालक को आनंद, खुशी एवं संतुष्टि मिलती है, यह उन्हें उत्साहित करता है और उनके जीवन में विविध रंग भरता है। खेलने से बालक के अंदर के सभी नकारात्मक संवेग बाहर निकल आते हैं तथा वह तनाव मुक्त हो जाता है। अतः खेल बालक का जीवन है, जिसमें उसे असीम आनंद, अपार हर्ष एवं संतुष्टि की आपूर्ति होती है। जो बालक बचपन में जितना अधिक खेलते हैं, उनके व्यक्तित्व का उतना ही सुंदर ढंग से विकास होता है। बालक उतना ही अधिक स्वस्थ एवं निरोग बना रहता है। मगर कई माता पिता अपने बच्चों को खेलने नहीं देते हैं। वे बालकों को खेलने से मना करते हैं, क्योंकि धूल में खेलने से बालक का कपड़ा गंदा होता है। उनका मानना है कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ऐसी निम्न विचारधारा के कारण ही वे बालकों को खेलने से मना कर देते हैं और उनके बहुमुखी व्यक्तित्व विकास को कुंठित कर देते हैं। वे हरदम पढ़ाई करो की रट लगाए रहते हैं। उनका मानना है कि खेलने कूदने से केवल समय की बर्बादी होती है और खेल बालक को बिगाड़ कर रख देते हैं। मगर नतीजा इसके विपरीत निकलता है। जो अभिभावक अपने बालकों पर अधिक अंकुश रखते हैं, खेलने से उन्हें वंचित करते हैं, वे नादानी में भी अपने बालकों का अहित कर देते हैं। वर्तमान में खेल के महत्व को शिक्षा शास्त्रियों द्वारा विद्वानों ने भी स्वीकारा है। वे खेल को सीखने एवं अनुभव प्राप्त करने का एक प्रभावी एवं सशक्त माध्यम मानते हैं। वे यह मानते हैं कि खेल के साथियों से बालकों को सही शिक्षा देकर उन्हें एक जिम्मेदार एवं कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाया जा सकता है। उन्हें कर्तव्य के प्रति सचेत किया जा सकता है और समय के महत्व को समझाया जा सकता है कि जरा सी लापरवाही होने या चूक होने से ही पासा पलट सकता है। सरकार का ध्यान भी खेल के प्रति लगाया जा सकता है। यही कारण है कि विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में विभिन्न कक्षा के पाठ्यक्रमों के साथ ही खेल कूद के कार्यक्रम भी रखे जाते हैं और खेल की विविध गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। विद्यालयों में खेल कूद के पीरियड लगते हैं, जिसे इंडोर और आउटडोर गेम्स खिलाए जाते हैं। पृष्ठ संख्या 392, खेल का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ प्ले। खेल आनंददायक होता है, खेल रुचिकर होता है, खेल का उद्देश्य केवल खेल होता है। हार जीत से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। स्वतंत्रता इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अतः खेल एक ऐसी रचनात्मक प्रवृत्ति होती है जिसे अपार खुशी एवं असीम संतुष्टि मिलती है। एक ओर जहां यह बालकों के जीवन में रंग भरता है और उन्हें नव जीवन प्रदान करता है, वहीं यह वयस्कों को अधिक थकान एवं निरस्ता से छुटकारा दिलाता है। परंतु यदि किसी व्यक्ति का व्यवसाय धंधा ही खेल है तो वह खेल नहीं कहलाएगा, बल्कि यह जीविकोपार्जन का एक साधन कहलाएगा। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों व विद्वानों ने खेल को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। कुछ परिभाषाएं निम्नानुसार हैं। नंबर एक, हरलॉक के अनुसार खेल वह क्रिया है जो अंतिम परिणाम पर विचार किए बिना ही केवल आनंद प्राप्त के लिए ही की जाती है। नंबर दो, रसल के अनुसार खेल एक आनंददायक शारीरिक या मानसिक क्रिया है जो अपने आप में पूर्ण तथा जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता है। नंबर तीन, टीपी नन के अनुसार खेल रचनात्मक क्रियाओं की अभिव्यक्ति है। नंबर चार, क्रो तथा क्रो के शब्दों में खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब उस कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है जिसे वह करना चाहता है। नंबर पाँच, विट्टल हेम के अनुसार खेल वे क्रियाएं हैं जिनमें कोई नियम नहीं होता है, जिन्हें खिलाड़ी अपने मन से खेलता है और जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है और ना ही कोई बाहरी दबाव होता है। नंबर छः, जीन पियाजे के अनुसार खेल में बारंबार प्रतिक्रियाएं होती हैं जो विशुद्ध रूप से क्रियात्मक आनंद के लिए खेली जाती हैं। नंबर सात, जेम्स रॉश के शब्दों में खेल आनंदपूर्ण, स्वप्रेरित एवं रचनात्मक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। नंबर आठ, बी एन झा के अनुसार खेल एक ऐसी जन्मजात एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसके लिए किसी प्रकार के शिक्षण की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर नौ, स्टर्न के शब्दों में खेल एक स्वैच्छिक एवं आत्म केंद्रित क्रिया है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर निस्संदेह कहा जा सकता है कि खेल एक जन्मजात स्वाभाविक एवं आत्मप्रेरित प्रवृत्ति है जो केवल आनंद प्राप्ति के लिए खेली जाती है। हार जीत के अंतिम परिणाम से इसका कोई संबंध नहीं होता है। अतः स्पष्ट है कि खेल बालकों में स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, चंचलता, सजगता, सहयोग, प्रसन्नता एवं उत्साह का भाव भरता है। पृष्ठ संख्या 393, खेल एवं कार्य में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्ले एंड वर्क। आमतौर पर यह माना जाता है कि खेल केवल खेल के लिए व आनंद प्राप्ति के लिए ही खेला जाता है। इसका कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होता है, इसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता, परंतु कार्य उद्देश्यपूर्ण होता है और इसके अंतिम परिणाम पर विचार किया जाता है, परंतु वर्तमान विचारधारा के अनुसार कोई भी कार्य खेल अथवा कोई भी खेल कार्य बन सकता है। वह मुख्यतः खेलने वाले, कार्य करने वाले व्यक्ति की मनोदशा पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को खेल समझकर उत्साह से भरकर आनंद मग्न होकर कर रहा हो तो मनोवैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार खेल ही कहलाएगा, किंतु यदि वही व्यक्ति उस कार्य को बाध्य होकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर रहा है तो कार्य कहलाएगा। खेल एवं कार्य में क्या अंतर है, इसे निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। क्रम संख्या खेल वर्क। नंबर एक, खेलों में व्यक्ति बालक को पूरी स्वतंत्रता रहती है, वह किसी बंधन में नहीं रहता, वह जब तक चाहता है, जहां चाहता है, जिस चीज से चाहता है खेलता है। जब खेलने का मन नहीं करता तब उसे बंद कर देता है, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, वह जब चाहे खेल को बंद कर सकता है। कार्य में बालक अथवा व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता है, पैसा कमाने व नौकरी की व्यवस्था के कारण व्यक्ति को इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं रहती कि वह अपनी मर्जी से काम करे या नहीं करे। नंबर दो, खेलों में भरपूर आनंद, जोश, उल्लास, उत्साह व रोचकता रहती है। बालक हो या किशोर, युवा हो या वृद्ध, उन्हें असीम आनंद एवं अपार संतुष्टि प्राप्त होती है। कार्य में आनंद की मात्रा घटते बढ़ते रहती है, कार्य से निरसता, उबाऊपन, अरुचि एवं थकावट का बोध होता है। यही कारण है कि कार्य में आनंद की अनुभूति नहीं होती है तथा कार्य करने के उपरांत व्यक्ति थक जाता है। नंबर तीन, खेल लक्ष्यहीन होता है, इसका उद्देश्य केवल आनंद एवं मनोरंजन प्राप्त करना होता है। कार्य में लक्ष्य प्राप्ति का होना अति आवश्यक होता है, लक्ष्य प्राप्ति के बिना कार्य का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। नंबर चार, खेल में अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता है, कार्य में परिणाम प्रमुख होता है, कार्य करने के बाद इसके मूल्यांकन पर विचार किया जाता है। पृष्ठ संख्या 394। नंबर पाँच, खेल अर्थोपार्जन के लिए नहीं किया जाता, यदि कोई खिलाड़ी पैसा कमाने के लिए खेलता है तो वह कार्य कहलाएगा न कि खेल, कार्य अर्थोपार्जन के लिए किया जाता है। नंबर छह, खेल स्वैच्छिक एवं आत्मप्रेरित होता है, कार्य महता बाह्य प्रेरित होता है, यह बाह्य प्रलोभन को आर्थिक प्रलोभन भी कहते हैं। नंबर सात, खेलों में स्वाभाविकता होती है, इस कारण खेलों की सख्ती से पालन नहीं किया जाता है। कार्य में नियमबद्धता होती है, यदि नियमानुसार व सख्ती से कार्य नहीं किया जाए तो आर्थिक क्षति अथवा नुकसान भी हो सकता है। नंबर आठ, खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है, इसे विश्व का हर बालक, हर व्यक्ति करना चाहता है। कार्य अर्जित क्रिया है, कार्य करने में व्यक्ति की जोर आता है। नंबर नौ, खेल को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बालक स्वतः ही दूसरे बालकों का अनुकरण करके विभिन्न प्रकार के खेल सीख लेता है। कार्य को सिखाने की जरूरत होती है, इससे अधिक दक्षता एवं कौशल की आवश्यकता होती है, तभी वह किसी भी कार्य को सुंदर ढंग से संपन्न कर सकता है। नंबर दस, खेल को बालक अपनी इच्छा से खेलता है, कार्य स्वैच्छिक भी हो सकता है और दूसरे की इच्छा पर आश्रित भी। जब कार्य धर्म कमाने की इच्छा से किया जाता है तो वह स्वैच्छिक हो जाता है। नंबर ग्यारह, खेल से शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, चारित्रिक आदि का विकास होता है, कार्य से अनुभव की प्राप्ति होती है। नंबर बारह, खेलों का विकास किशोरावस्था तक अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है और इसके बाद आयु वृद्धि के साथ घटने लगता है, कार्य कौशलों का विकास किशोरावस्था के बाद तीव्र गति से बढ़ने लगता है। नंबर तेरह, खेल को बंद करने से अथवा उसमें अवरोध उत्पन्न करने से बालक क्रोधित हो जाता है, कार्य को बंद कर देने से बालकों को तो दुख नहीं होता और ना ही वे क्रोधित होते हैं, बल्कि उन्हें खुशी होती है। पृष्ठ संख्या 395। अतः स्पष्ट है कि एक काम जो एक व्यक्ति के लिए खेल हो सकता है, वही काम दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य। जैसे जब बालक पौधों को अपनी मर्जी से सींचता है और उससे उसे आनंद की प्राप्त होती है, तो वह उस बालक के लिए खेल कहलाएगा। परंतु यदि पौधों को पानी पिलाने का कार्य किसी माली के द्वारा किया जाएगा, तो वह कार्य कहलाएगा, क्योंकि इससे माली को धन मिलेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि कार्य एवं खेल व्यक्ति की मनोवृत्ति एवं मनोदशा पर निर्भर करता है कि किसे वह खेल मानता है और किसे कार्य। इसी प्रकार छोटे बालकों के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कैरम आदि खेल होता है, परंतु बड़े बालकों के लिए यही खेल काम कहलाता है, जब वह उसे हार जीत अथवा धन कमाने की दृष्टि से खेलता है, क्योंकि इसमें लक्ष्य निर्धारित होता है और लक्ष्य निर्धारित ही खेल खेलना रहकर काम हो जाता है। बालकों के खेल की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रंस प्ले। बालक हो या युवा, किशोर हो या प्रौढ़, खेल से सभी को आनंद एवं संतुष्टि की प्राप्ति होती है। खेलने के बाद मन तरोताजा हो जाता है, थकान मिट जाती है और स्फूर्ति आती है। व्यक्ति अथवा बालक दोनों उत्साह से कार्य को करता है, परंतु बालकों एवं वयस्कों के खेल में भिन्नता होती है। बालकों के खेल की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो वयस्कों के खेलों में नहीं पाई जाती हैं। बालकों के खेल की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं। नंबर एक, बालकों का खेल परंपराओं से प्रभावित होता है। चिल्ड्रंस प्ले इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेडिशंस। बालकों के खेल की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह परंपराओं से प्रभावित होता है। बड़े बालक जैसा खेलते हैं, छोटे बालक भी उन्हीं का अनुकरण कर उन्हीं की तरह खेलते हैं। इस प्रकार खेलों का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी स्वतः ही होता रहता है। यही कारण है कि कबड्डी, गुड़िया का खेल, फुटबॉल, गुल्ली डंडा, आँख मिचौली, छुपन छुपाई, सुतौलिया, चोर सिपाही आदि खेल हमारे दादा नाना और उनके भी दादा नाना खेलते थे, जिन्हें हम आज भी खेलते हैं। इन्हीं खेलों को हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी खेलेंगी। खेलों में समाज एवं राष्ट्र की परंपराओं का भी ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक राष्ट्र का अपना राष्ट्रीय खेल होता है, जिसे इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट कहा जाता है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इतना ही नहीं, प्रत्येक देश कुछ खेलों में विशेष ध्यान देते हैं। देश की आर्थिक नीति, जलवायु, उपलब्ध संसाधन आदि से खेल प्रभावित होता है। वर्तमान में भारत में क्रिकेट का बोलबाला है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थाभाव के कारण सितौलिया, खो खो, कबड्डी, डेंग पानी, लंगड़ी टांग, गुल्ली डंडा, रस्सी उछलना आदि खेलों को ही प्राथमिकता है। हाँ, शहरों में वॉलीबॉल, क्रिकेट, पोलो, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन आदि महंगे खेल अवश्य खेले जाते हैं। नंबर दो, बालकों के खेल का एक निश्चित प्रतिमान होता है। चिल्ड्रंस प्ले फॉलोज अ डेफिनेट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। बालकों के खेलों की एक प्रमुख विशेषता है, इसका एक निश्चित प्रतिमान होता है। खेलों का विकास एक निश्चित क्रम से होता है। यह निश्चित क्रम मुख्यतः बालकों की आयु पर निर्भर करता है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है और उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास होता जाता है, उनके खेलों के ढंग में परिवर्तन होता जाता है। एक अवस्था विशेष में जो खेल उन्हें अधिक प्रिय लगते हैं, वही खेल दूसरी अवस्था में उबाऊ एवं बोरिंग लगते हैं। यही बाल्यावस्था के खेल उत्तर बाल्यावस्था में बचाना खेल कहलाते हैं। पृष्ठ संख्या 396। सामान्यतः बालकों में खेलों का विकास चार अवस्थाओं में होता है। रोमन का एक, खोजक अवस्था, एक्सप्लोरेटरी स्टेज। बालकों की 4 माह से लेकर 12 माह की अवस्था खेल की दृष्टि से खोजक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक जिन चीजों को देखता है अथवा जिसे चीज पकड़ाई जाती है, वह उसे पूरी ताकत से झपट कर पकड़ता है। इस प्रयास में वह न केवल अपने हाथों पैरों को गतिमान करता है, बल्कि संपूर्ण शरीर को ही गतिमान कर देता है। 3 से 4 माह का बालक अपनी माता को देखकर ही खेलता है। जब वह अपनी माता को अपने आसपास आते देखता है और हाथ पैर पटकने तथा हंसने मुस्कुराने लगता है। रोमन का दो, खिलौना अवस्था, टॉय स्टेज। यह अवस्था 1 से 6 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था का बालक अपने खिलौनों से खेलता है। 1 से 2 वर्ष का बालक अपने खिलौनों को खूब अच्छी तरह से देखता है, उन्हें घुमा घुमा कर उनका निरीक्षण करता है और फिर उसे जमीन पर पटकता है। 2 से 3 वर्ष का बालक समझता है कि उसका खिलौना जीवित वस्तु है। इस कारण वह अपने खिलौनों से बातें भी करता है, जैसे लड़कियां गुड़िया को लेकर उसे सजाते संवारती हैं, फिर उसे सुलाने का उपक्रम भी करती हैं, साथ ही उसकी पीठ थपथपाती हैं और टूटी फूटी भाषा में लोरी गाकर सुनाती हैं। इसी प्रकार बालक कार, ट्रक, टैक्सी आदि खिलौनों को जीवित वस्तु मानते हैं, उसका ड्राइवर बनकर उसे चलाने का नाटक करते हैं, साथ में उससे बातें भी करते हैं। खिलौना अवस्था में बालक स्वप्रेमी एवं स्वकेंद्रित होता है, वह अपने खिलौनों से अकेले ही खेलता है और किसी दूसरे बच्चों के साथ शेयर नहीं करता है, इसलिए इसे स्वतंत्र खेल भी कहते हैं। बाद में दो तीन बालक मिलकर खिलौनों को खेलते हैं, जिसे साहचर्य खेल कहते हैं। इस अवस्था में खिलौनों को लेकर बालकों के बीच लड़ाई झगड़ा एवं मारपीट भी हो जाती है। 4 से 5 वर्ष का बालक दूसरे बालकों के साथ खेलने लगता है, साथ ही वह खिलौनों को शेयर भी करता है। रोमन का 3 खेल अवस्था प्ले स्टेज। जब बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं, तब उनके खेल की प्रवृत्ति में भिन्नता आती है। अब वह समूह के साथियों के साथ खेलना चाहता है, उनकी सृजनात्मक शक्ति एवं कल्पना शक्ति में वृद्धि हो जाती है। अतः अब उसे यह ज्ञान हो जाता है कि खिलौनों से खेलना तो बच्चों का खेल है, इसलिए वे खेलों में परिवर्तन चाहते हैं और नए नए खेल खेलते हैं। परंतु अब वे केवल अकेले रहते हैं और अपने खिलौनों से ही खेलते हैं। रोमन का 4 दिवा स्वप्न अवस्था डे ड्रीम स्टेज। दिवा स्वप्न डे ड्रीमिंग भी एक प्रकार का खेल है। इसकी शुरुआत वयः संधि अवस्था से होती है तथा किशोरावस्था के अंत तक यह स्वतः ही प्रारंभ एवं समाप्त भी हो जाती है। इससे बालकों को अति आनंद एवं संतुष्टि की अनुभूति होती है। बालक को खेलने कूदने में कम मन लगता है और वे अधिकांश समय केवल कल्पना लोक में ही विचरण करते हैं। इस अवस्था में माता पिता एवं समाज के लोगों की अभिवृत्तियां भी बालक के प्रति नकारात्मक होती हैं, जिसके कारण उन्हें सामाजिक एवं व्यक्तिगत समायोजन में कठिनाई आती है। पृष्ठ संख्या 397। बड़े बालक एवं किशोर विभिन्न प्रकार के खेलों में रुचि लेने लगते हैं, जिनमें कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन आदि प्रमुख हैं। ग्रामीण बालक खो खो, कबड्डी, रस्सी कूदना, सितौलिया, गुल्ली डंडा आदि खेल खेलते हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि खेल के एक निश्चित प्रतिमान होते हैं, जो आयु वृद्धि के साथ साथ कदम दर कदम क्रमिक रूप से बढ़ते हैं। नंबर 3, आयु वृद्धि के साथ खेल क्रियाओं में कमी आती है। नंबर ऑफ प्ले एक्टिविटीज डिक्रीजेस विद एज। जैसे जैसे बालकों की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे खेल क्रियाओं में कमी आती जाती है, क्योंकि अब उन्हें खेलने के लिए समय एवं अवसर भी कम ही मिलता है। उन्हें विद्यालय में अनुशासित रहकर पढ़ना लिखना पड़ता है और गृह कार्य निपटाना पड़ता है, साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ कार्यों में भी हाथ बटाना पड़ता है। अतः पढ़ने लिखने एवं कार्य की व्यस्तता के कारण वे विभिन्न खेलों में अधिक समय तक भाग नहीं ले पाते हैं। इस कारण वे बालक एक या दो ही खेल खेलते हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। अतः स्पष्ट है कि आयु वृद्धि के साथ खेल संबंधी क्रियाओं में कमी आने लगती है। नंबर 4, आयु वृद्धि के साथ खेल के साथियों में कमी आती है। नंबर ऑफ प्लेमेंट डिक्रीजेस विद एज। छोटे बालक उन सभी बालकों के साथ खेलने को तैयार हो जाते हैं जो उन्हें अपने साथ खिलाने को तैयार रहते हैं। इतना ही नहीं, वे खेल के साथी भी बड़ी जल्दी से बदल देते हैं। अब उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि दूसरे समूह के बच्चे और भी अच्छे खेल खेल रहे होते हैं, तो वे शीघ्रता से उस समूह के सदस्य बन जाते हैं जिनमें उन्हें अधिक आनंद आता है। मगर बड़े बालकों में ऐसी बात नहीं होती है, वे केवल कुछ चुनिंदा दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते हैं। विशेषकर वे उन खास दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते हैं जिनके विचार मिलते हैं और जो खेल में नया विचार देते हैं। इस प्रकार उनके दोस्तों की संख्या में कमी आती जाती है। ईबी हरलॉक के शब्दों में, यंग चिल्ड्रन विल प्ले विद एनीवन हु इज अवेलेबल विद विलिंग टू प्ले विद देम व्हेन दे फाइंड चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग इन अ मोर इंटरेस्टिंग वे दैट शिफ्ट दे द चिल्ड्रन दे आर प्लेइंग विद न्यू वंस। नंबर 5, बालक अपनी मर्जी से खेलते हैं। चिल्ड्रन प्ले अकॉर्डिंग टू दियर चॉइस। खेल की प्रमुख विशेषता ही स्वच्छंदता एवं स्वतंत्रता है। बालक अपनी इच्छा से मनपसंद खेल खेलते हैं। उनका जब मन करता है तब खेलते हैं, जब मन नहीं करता है तब वे खेलों को बंद कर देते हैं। वे अपनी मर्जी से जहाँ चाहें, जिस जगह पर चाहें, जिस खिलौने से चाहें खेल सकते हैं, उनके लिए समय, स्थान, खेल सामग्री आदि का कोई बंधन नहीं होता है। अतः बालकों का खेल उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। पृष्ठ संख्या 398, नंबर 6, खेल समस्या का समाधान है। प्लेज द गुड मीन्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। बालकों के विभिन्न समस्याओं के समाधान में खेलों का महत्वपूर्ण स्थान है। बालक कई समस्याओं का निराकरण खेलों के माध्यम से करना सीख जाते हैं। जैसे खेल खेल में बालक गणितीय पहेलियों को बुझाना सीख जाते हैं, इसी प्रकार यदि किसी बालक को डॉक्टर या सुई से डर लगता है तो वह डॉक्टर मरीज खेल खेल कर सुई के प्रति डर को समाप्त कर लेता है। इसी प्रकार यदि कोई बालक बिल्ली या चूहे से डरता है तो वह खेल खेल में बिल्ली की तरह आवाज़ निकालता है और उसका बिल्ली से डर समाप्त हो जाता है। अतः खेल बालकों के समस्या समाधान का उत्कृष्ट साधन है। नंबर 7, बालकों के खेल अनौपचारिक से औपचारिक की ओर होते हैं। चिल्ड्रंस प्ले चेंजेज फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल। प्रारंभ में बालक जो भी खेल खेलते हैं उन्हें अनौपचारिकता ही रहती है। वे जहाँ चाहें, जब चाहें, जिस स्थान पर चाहें, जिस खेल से चाहें खेल सकते हैं। उनका खेल स्वैच्छिक, आत्मप्रेरित एवं स्वाभाविक होता है। खेलते समय वे ना तो किसी नियम का अनुकरण करते हैं और ना ही उनकी कोई निश्चित सीमा होती है, परंतु जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है खेल में औपचारिकता की मात्रा बढ़ती जाती है। अब उन्हें खेलने के लिए समय सीमा के साथ ही कुछ नियम भी निर्धारित करने पड़ते हैं। गैंग अवस्था में बालक अपने खेल के साथियों को खेलने के लिए एक निश्चित समय एवं स्थान निर्धारित करता है जहां सभी साथियों को समय पर पहुंचना जरूरी होता है। फिर बालक कुछ विशिष्ट खेलों को ही खेलता है, जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कैरम आदि। अतः उम्र बढ़ने के साथ साथ बालकों के खेल स्वतः ही औपचारिक होते जाते हैं। नंबर 8, बालकों के उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी शारीरिक क्रियाओं में कमी आती है। As children grow older, their physical activity gradually decreases. छोटे बालकों के खेलों में शारीरिक क्रियाओं में बहुलता आती है। वे रस्सी कूदने, दौड़ने भागने, उछलने कूदने, पेड़ पर चढ़ने जैसे खेलों में अधिक भाग लेते हैं। तीसरी चौथी कक्षा के बालक बालिकाएं शारीरिक खेलों को अधिक खेलते हैं, परंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ वे मानसिक खेलों के प्रति अधिक प्रेरित होते जाते हैं। अब वे कैरम, लूडो, सांप सीढ़ी, शतरंज, ताश जैसे खेलों में भाग लेने लग जाते हैं। वे टीवी देखकर, कॉमिक्स व किताबें पढ़कर, गाना गाकर व सुनकर अपना मनोरंजन करते हैं। वयः संधि अवस्था में वे मुख्यतः दिवा स्वप्न देखकर अपना मनोरंजन करते हैं। नंबर 9, बालकों के खेल सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं। चिल्ड्रंस प्ले प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, गामक आदि विकास की तरह ही खेल विकास भी सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। 5 से 6 माह का बालक अपनी माता को देखकर ही हाथ पैर पटक पटक कर खेलने लगता है। फिर वह चीजों, खिलौनों को पकड़ने के लिए झपटता है। 1 से 2 वर्ष का बालक स्वतंत्र खेल खेलते हैं। वे अपने खिलौनों को छूकर, दूर फेंककर, पटककर, उलट पलट कर देखते हैं और फिर उसे तोड़ फोड़ देते हैं। उनके खेलों में कोई विशिष्टता नहीं होती। वे अपनी इच्छा से जूते, चप्पल, लकड़ी के छोटे छोटे गुटके, घड़ी, झाड़ू की सीकियां, टीन के डिब्बे, बोतल के ढक्कन आदि से खेलते हैं। परंतु जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं उनके खेलों में जटिलता एवं विशिष्टता आती जाती है। अब वह 2 से 3 बालकों के साथ मिलकर खेलने लगता है, जिसे सहचर्य खेल, एसोसिएट प्ले कहते हैं। इस अवस्था में बालक शारीरिक खेल ही खेलते हैं, जिसमें रस्सी कूदना, दौड़ना भागना, छुपना, उछलना आदि प्रमुख होता है। फिर वह गेंद, हॉकी स्टिक, फुटबॉल, बल्ला व गेंद आदि से खेलने लगता है। 5 से 6 वर्ष का बालक सामूहिक खेलों में भाग लेने लग जाता है। धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ ही साथ उसका शारीरिक खेल कम हो जाता है और वे शतरंज, ताश, लूडो, कैरम आदि खेल खेलने लग जाते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बालकों के खेल सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं। पृष्ठ संख्या 399, नंबर 8, बालकों के खेलों में यौन विभिन्नता दिखाई देती है। सेक्स डिफरेंसेस आर शेन इन चिल्ड्रंस प्ले। 2 से 3 वर्ष के सभी बालक, चाहे वे लड़का हो या लड़की, एक ही तरह के खेल खेलते हैं। उनमें कोई यौन विभिन्नता नहीं दिखाई देती, परंतु 3 से 4 वर्ष के बालक में लड़के लड़कियों के खेल में अंतर दिखाई देने लगता है। 5 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं में यह अंतर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। लड़कियां जहां सृजनात्मक खेल खेलती हैं, वहीं लड़के तोड़फोड़ एवं विध्वंसनात्मक खेल में अधिक रुचि लेते हैं। लड़के खिलौने से अधिक खेलते हैं, फिर उसे चारों तरफ घुमा फिरा कर देखते हैं, उसके नट बोल्ट खोलते हैं और यदि उन्हें नट बोल्ट नहीं दिखाई देता तो उन्हें पटक कर तोड़ देते हैं। लड़कियां मुख्यतः गुड्डे गुड़िया, राजा रानी, छुपम छुपाई, भोजन पकाना, बर्तन समेटना, घर सजाना आदि खेल खेलती हैं। लड़के बंदूकें चलाना, ड्राइवर बनकर ट्रक चलाना, चोर सिपाही आदि खेल खेलते हैं। लड़कों के खिलौने भी लड़कियों के खिलौने से भिन्न होते हैं। लाइबर्ट आरएम एंड आर ए बैरोन एवं साथियों ने अपने अध्ययन से यह पाया कि लड़के उन खिलौनों से अधिक बिल्कुल भी खेलना नहीं चाहते हैं जो खासकर लड़कियों के लिए बनाए जाते हैं अथवा जिनका उपयोग लड़कियां करती हैं। ई बी हॉरलॉक के अनुसार बॉयज नॉट ओनली ड्रॉप दियर गर्ल्स प्लेमेट्स व्हेन दे इंटर स्कूल बट दे आल्सो शाई अवे फ्रॉम ऑल प्ले एक्टिविटीज विच आर नॉट रिगार्डेड एज अप्रोप्रिएट फॉर देम एवर व्हेन गर्ल्स प्रिफर प्ले एक्टिविटीज विच द सोशल ग्रुप रिगार्ड एज मैस्कुलिन दे आर लाइक बॉयज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल प्रेशर्स टू प्ले इन अ सेट अप्रोप्रिएट मैनर। अतः स्पष्ट है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बालकों के खेलों में यौन भिन्नता दिखाई देती है। लड़के लड़कियों के साथ खेलने से मना कर देते हैं और लड़कियां लड़कों के साथ खेलने से मना कर देती हैं। नंबर 11, उम्र वृद्धि के साथ खेल सामाजिक होते जाते हैं। प्ले बिकम्स इंक्रीजली सोशल विद एज। खेल विकास क्रम में बालक पहले दौड़ने भागने उछलने कूदने जैसे शारीरिक खेल खेलते हैं। छोटे बालक स्वप्रेमी एवं स्वकेंद्रित होते हैं तथा अपने खिलौनों से अकेले ही खेलते हैं। फिर बालक 2 से 3 साथियों के साथ मिलकर खेलते हैं, परंतु तब उनमें आपसी सहयोग एवं समन्वय बहुत कम होता है, इसलिए वे थोड़ी देर खेलने के बाद लड़ने झगड़ने लगते हैं। इस प्रकार झपटा मारकर दूसरे बालक का खिलौना छीनने का प्रयास करता है और दूसरा बालक जब खिलौना देने से मना कर देता है और खिलौने को छुपा लेता है अथवा जोर से मुट्ठी में पकड़ लेता है तो खिलौना छीनने वाला बालक उस बालक के बाल नोचने लग जाता है। वह उसके मुंह, गाल, हाथ में चुटकी चिमटी भरने लग जाता है और उसके कपड़े नोचने लग जाता है। 3 से 4 वर्ष का बालक दूसरे बालकों को खेलते देखकर ही आनंदित होते रहते हैं। 5 से 6 वर्ष का बालक समूह के साथियों के साथ खेलने लगता है, साथ ही समूह में अपनी पहचान बनाने के लिए समूह द्वारा निर्धारित मानदंडों की आपूर्ति करता है। इस प्रकार उसमें सहनशीलता, त्याग, अनुशासन, सहयोग, समन्वय, करुणा, मित्रता जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। स्टोन ने बालक के खेल की व्याख्या कुछ इस प्रकार से की है। इवन वेन द बेबी प्ले विद द मदर द बेबी इज ऑफन अ प्लेथिंग वाइल मदरिंग वन इज द प्लेयर इन टाइम बोथ द चिल्ड्रन एंड द मदर वन आर म्यूचुअली प्लेयर्स एंड प्लेथिंग्स। नंबर 12, बालकों के खेलों में आवृत्ति की अधिकता होती है। देयर इज अ रिपीटेशन इन चिल्ड्रंस प्ले। बालकों के खेलों की प्रमुखता यह होती है कि उनके खेलों में आवृत्ति रिपीटेशन का अंश अधिक होता है। वे एक ही खेल को दिन भर में कई बार खेलते हैं। लड़के बंदूक चलाना, क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना आदि खेल दिन भर में अनेक बार खेलते हैं, या यूं कहें तो वे दिन भर खेलते ही रहते हैं। बार बार एक ही खेल खेलने से उनमें परिष्कृति आती है। नंबर 13, बालक नए खेलों के प्रति इच्छुक होते हैं। चिल्ड्रंस हैव डिजायर फॉर न्यू प्ले। बालक की यह हार्दिक इच्छा होती है कि वे हर दिन नए खेल खेलें। पुराने खेल से उनका मन जल्दी भर जाता है। यही कारण है कि बालक जब बाजार जाते हैं तो नए खिलौनों की मांग करते हैं। नए खिलौने से खेलने पर उन्हें बड़ा मजा आता है। नए नए खेल खिलौनों की इच्छा के कारण ही बालक जल्दी ही अपना गैंग बदल देते हैं तथा दूसरे समूह का सदस्य बन जाते हैं। नंबर 14, बालकों के खेलों में खतरा रहता है। देयर इज अ डेंजर इन चिल्ड्रंस प्ले। बालकों के कई खेल ऐसे होते हैं जिनमें गिरने, चोट लग जाने, खून बहने आदि का खतरा रहता है। खेलते समय अक्सर बच्चे गिर जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है, जैसे साइकिल चलाना, स्केटिंग करना, पेड़ पर चढ़ना, दीवार से कूदना, तैरना आदि। परंतु ऐसे जोखिम भरे खेल भी बालक बड़े ही उत्साह से खेलते हैं और खुश होते हैं। जोखिम भरे खेल बालक में निर्भीकता का भाव पैदा करता है। नंबर 15, आयु वृद्धि के साथ साथ विशेष खेलों में अधिक समय लगता है। टाइम स्पेंट इन स्पेसिफिक एक्टिविटीज इंक्रीजेज विद एज। जैसे जैसे बालकों की उम्र बढ़ती जाती है, उनके खेलों की संख्या के साथ ही खेल के साथियों की संख्या भी कमी होती जाती है, परंतु उनके मनपसंद खेलों में अधिक समय व्यतीत होता है। कारण स्पष्ट है, उम्र बढ़ने के साथ साथ उनमें पढ़ना लिखना भी पड़ता है, साथ ही गृह कार्यों में भी माता पिता का सहयोग करना होता है। इसलिए वे केवल दो तीन खेलों को ही चुनते हैं जो उन्हें बहुत अधिक पसंद होता है और उन्हें खेलों को खेलने में अधिकांश समय व्यतीत करते हैं, जैसे क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी आदि। पृष्ठ संख्या 401, बालकों के विकास में खेलों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। बालकों के सर्वांगीण विकास में खेलों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। खेल जीवन है जो बालक को आनंदित, पुलकित एवं प्रफुल्लित करता है। उनके जीवन को सरस, स्नेहिल, उदार एवं सहृदय बनाता है। यदि बालकों के जीवन में खेल को निकाल दिया जाए तो वह प्राणहीन, रसहीन एवं रंगहीन हो जाएगा। फ्रोबेल ने खेलों के महत्व को स्वीकारते हुए लिखा है, खेल मनुष्य के लिए, विशेषकर बालक के लिए, उसके अंतः जगत एवं बाल जगत का दर्पण है और इस दर्पण के भीतर से देखने की आवश्यकता है। अतः यह जीवन एवं लगन शक्ति को व्यक्त करने वाली प्रवृत्ति है। बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, अनुशासन आदि के विकास में खेल का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे कतई नकारा नहीं जा सकता है। डी ए मिलचैम्प 1953 ने अपने अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकाला कि खेल बालक को व्यक्ति के रूप में विकसित होने में सहायक हैं। प्ले हेल्प्स द चाइल्ड टू डेवलप एज अ पर्सन। यही धारणा है कि आज भारत सरकार भी खेल के महत्व को स्वीकारने लगी है। शिक्षण संस्थाओं में, शिक्षा के क्षेत्र में, साथ ही खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विविध खेल गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने खेल को शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग माना है तथा नर्सरी एवं किंडरगार्टन स्कूल के बालकों को खेल खेल के माध्यम से ही शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया है। आंगनबाड़ी एवं बालवाड़ी में भी बालकों को खेल के माध्यम से ही पढ़ना लिखाया सिखाया जाता है। बालकों के जीवन में खेलों का महत्व निम्नानुसार है। नंबर एक, शारीरिक विकास में, इन फिजिकली डेवलपमेंट। शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से खेल का अनुपम स्थान है। शारीरिक अंगों का विकास तथा इन अंगों से संबंधित कौशलों का विकास भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेलों पर निर्भर करता है। खेलों से बालकों की मांसपेशियां सुगठित होती हैं और उनका समुचित ढंग से विकास हो जाता है। वे अंग जो अविकसित होते हैं वे भी सक्रिय खेल खेलने से विकसित हो जाते हैं। खेल से सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है। साथ ही खेलने से बालक के भीतर अतिरिक्त संचित ऊर्जा का निष्कासन हो जाता है। परिणामतः बालक तनाव मुक्त होकर स्वस्थ जीवन जीते हैं। इतना ही नहीं, खेल से उनकी हड्डियां मजबूत बनती हैं। दौड़ने, भागने, उछलने कूदने, पेड़ पर चढ़ने, घुड़सवारी करने, साइकिल चलाने, तैरने आदि से रक्त संचार तेज होता है, जिससे शरीर में स्फूर्ति आती है। पाचन क्रिया अच्छी रहती है, खुलकर भूख लगती है, फलतः शरीर स्वस्थ एवं निरोग बना रहता है। अतः शारीरिक वृद्धि की दृष्टि से खेलों का बालक के जीवन में अमूल्य स्थान है। नंबर दो, मानसिक विकास में, इन मेंटल डेवलपमेंट। खेल न केवल शारीरिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अपितु मानसिक विकास में भी इसका अहम योगदान है। अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि जिन बालकों को माता पिता खेलने कूदने, भागने दौड़ने, उछलने कूदने आदि शारीरिक खेलों को खेलने का कम अवसर देते हैं, उनका मानसिक विकास भी धीमी गति से होता है। पृष्ठ संख्या 402, प्रारंभ में बालक शारीरिक खेलों, एक्टिव प्ले को खेलते हैं, बाद में वे मानसिक खेलों को भी महत्व देने लगते हैं, जैसे ताश, शतरंज, कैरम, लूडो, सांप सीढ़ी, पहेलियां बुझाना, गणितीय प्रश्नों को हल करना आदि मानसिक खेल खेलते हैं। चाहे खेल मानसिक हो या शारीरिक, इंडोर हो या आउटडोर, उसमें बालकों की मानसिक योग्यता, सक्रियता, सोच समझ, तर्क चिंतन आदि का उपयोग अवश्य ही होता है। फलतः उनकी मस्तिष्क की कोशिकाएं एवं तंत्रिकाएं विकसित होती हैं और उनमें परिपक्वता आती है। मानसिक खेलों से मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अतः माता पिता का यह परम कर्तव्य है कि वे बालकों के मानसिक विकास के लिए ऐसे खेल खेलने के लिए प्रेरित करें तथा ऐसे खिलौने उपलब्ध कराएं जिनसे उनका चिंतन, स्मरण, तर्क, सूझ, अंतर्दृष्टि एवं बौद्धिक क्षमता का विकास हो। वैसे आजकल विभिन्न प्रकार के खिलौने बाजार में मिलने लगे हैं जो बालक के मानसिक योग्यताओं के विकास में सहायक होते हैं। नंबर 3, सामाजिक विकास में, इन सोशल डेवलपमेंट। खेलों के माध्यम से बालक विभिन्न सामाजिक गुणों को सीखता है। यदि किसी बालक के कार्य करते समय बार बार टोका जाए अथवा डांटा फटकारा जाए तो वह बुरा मान लेता है और क्रोधित हो जाता है, परंतु खेलते समय वह बुरा नहीं मानता और ना ही क्रोधित होता है। इससे उसमें सहनशीलता एवं सहिष्णुता का गुण विकसित होता है। ये गुण सामाजिकता के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। बालक खेल के माध्यम से समूह का सदस्य बनता है और अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, दूसरों के विचारों को सुनता है, समझता है और उस पर टीका टिप्पणी करता है। वह खेल खेल में ही समूह के साथियों की बात को मानना सीखता है, साथ ही खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करता है। खेलते समय यदि किसी बालक को चोट लग जाती है तो दूसरे बालक उसे सहलाते हैं, उसके कपड़े पर लगे धूल को झाड़ते हैं, यदि खून निकल रहा होता है तो पोंछते हैं और सहानुभूति का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ तक कि बालक चोट लगने बालक को उसके घर तक छोड़ आते हैं। ये सारे गुण सामाजिकता के विकास में सहायक होते हैं। खेल में बालक अनुशासन में रहना एवं समय पालन करना सीख जाता है। इस प्रकार बालक में नेतृत्व, सहयोग, मित्रता, करुणा, दया, त्याग, बलिदान, सहिष्णुता, उदारता, मित्रता आदि उच्च कोटि के मानवीय गुणों का विकास होता है। ये गुण ही बालक को सामाजिक प्राणी बनाते हैं, फलतः बालक का सामाजिक समायोजन सुंदर ढंग से होता है। नंबर 4, संवेगात्मक विकास में, इन इमोशनल डेवलपमेंट। खेल का संवेगात्मक विकास भी बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह संवेगों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त एवं प्रभावशाली माध्यम है। खेल बालक को एक सुंदर सा रंगमंच उपलब्ध कराती है जहाँ बालक अपने संवेगों की अभिव्यक्ति खुलकर करते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, भय, आनंद जैसे संवेगों का वे खुलकर प्रदर्शन करते हैं। साथ ही दूसरे बालकों के संवेगों की अभिव्यक्ति के ढंग को देखकर बालक उन्हीं की तरह अपने संवेगों को प्रकट करना सीखते हैं। अतः खेलों से संवेगों में परिपक्वता, स्थिरता, निरंतरता एवं नियमितता आती है तथा वे संवेगों को बेहतर ढंग से प्रदर्शन करना सीखते हैं। खेल खेलने से बालक के भीतर संचित नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर निकल जाता है तथा वे तनाव मुक्त हो जाते हैं, फलतः उनमें चिड़चिड़ापन, क्रोध, दुख जैसे संवेगों की मात्रा कम हो जाती है। खेलते समय बालक खुश एवं आनंदित रहते हैं, परिणामतः उनमें सकारात्मक संवेगों का विकास होता है। इतना ही नहीं, खेल खेल में ही बालक यह समझ जाता है कि कब किस तरह के संवेगों को प्रदर्शित करना चाहिए और कब नहीं, कब क्रोध करना चाहिए, कब नहीं। इस प्रकार वे संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि यदि बालक कुछ कार्य कर रहा है और उसके काम में कमियां निकाली जाएं तथा उसे डांटा फटकारा जाए तो वे उदास हो जाते हैं, उनमें अप्रसन्नता एवं निराशा का भाव आ जाता है। इस कारण वह कभी-कभी क्रोधित हो जाता है। परंतु यदि खेलते समय डांटा फटकारा जाए तो वह समूह का सदस्य बनने के लिए चुपचाप उन्हें सहन कर लेता है। यही कारण है कि बालकों के समूह में खेलते समय उनमें आपस में मारपीट, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, परंतु वे फिर भी उन्हें समूहों में खेलना प्रारंभ कर देते हैं। नंबर 5, नैतिक विकास में, इन मॉरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास में भी खेलों का अहम योगदान है। खेल के माध्यम से बालक नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों को सीखता है, क्योंकि खेल का आधार ही कर्तव्य पालन, समय पालन, सच्चाई, सहयोग, समन्वय, सहिष्णुता, दया, करुणा आदि है। इस कारण बालक में स्वतः ही नैतिकता के गुणों का विकास हो जाता है। यदि कोई बालक खेलते समय बेईमानी करता है अथवा समूह द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है तो दूसरे साथी उसे झूठा, फरेबी व बेईमान कहकर उसे अपने समूह से निष्कासित कर देते हैं। इसलिए समूह का सदस्य बने रहने के लिए बालक को सत्यता, ईमानदारी, कर्तव्य पालन आदि नैतिक गुणों को स्वीकारना पड़ता है और उन्हें अपने जीवन में अपनाना पड़ता है। अतः बालक का व्यवहार स्वतः ही नैतिकता एवं आदर्शात्मक मूल्यों के सांचे में ढलकर सुंदर हो जाता है। खेल के माध्यम से बालक यह सीख जाता है कि एक अच्छा खिलाड़ी हार जाने पर भी निराश, उदास एवं उत्साहहीन नहीं होता और ना ही उसमें द्वेष, ईर्ष्या या जलन की भावना ही उत्पन्न होती है। नंबर 6, सृजनात्मकता के विकास में, इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। खेल से सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। जब बालक खेल के मैदान में उतरता है तो अपनी टीम को जिताने के लिए तर्क, चिंतन एवं मनन करता है और उसी के अनुसार कार्य एवं व्यवहार करता है। इससे उसकी सृजन शक्ति विकसित होती है। किसी भी बालक की खेल क्षमता को देखकर यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि वह आगे चलकर क्या बनेगा। बालक अपनी कल्पना एवं सृजन शक्ति का प्रयोग कर नए नए खेल खेलता है। इससे उसकी सृजनात्मकता का विकास होता है। ई बी हरलॉक के अनुसार, थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन इन प्ले चिल्ड्रन डिस्कवर दैट क्रिएटिंग समथिंग न्यू एंड डिफरेंट कैन बी सेटिस्फाइंग। दे देन ट्रांसफर दियर क्रिएटिव इंटरेस्ट इन सिचुएशन आउटसाइड द प्ले वर्ल्ड। पृष्ठ संख्या 404, नंबर 7, व्यक्तित्व विकास में इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बालक के बहुमुखी व्यक्तित्व विकास में खेलों का अहम योगदान है। खेलते समय बालक पूरी क्षमता का प्रयोग करते हैं और अपनी अभिव्यक्ति खुलकर करते हैं, अतः उनके मन के भीतर के सभी संवेग बाहर निकल जाते हैं। नकारात्मक संवेगों के प्रकाशन का खेल एक अच्छा एवं प्रभावी साधन है, अतः खेल से उनके व्यक्तित्व, शील गुणों, पर्सनालिटी ट्रेट्स जैसे उदारता, सहकारिता, सहयोग, ईमानदारी, सहिष्णुता आदि का विकास बाल्यावस्था में ही हो जाता है। खेल खेल में बालक अपनी सभी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं, जिससे उनमें हीन भावना एवं कुंठा पनपने लगती है। यदि कोई बालक पढ़ाई में कमजोर रहता है तो खेल में अव्वल रहकर अच्छा खिलाड़ी बन सकता है और अपने सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि खेल व्यक्तित्व विकास के लिए सुंदरतम मार्ग प्रशस्त करता है। नंबर 8, अंतर्दृष्टि के विकास में इन द डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट। खेल बालकों की सूझबूझ एवं अंतर्दृष्टि में भी सहायक होती है। एक बालक दूसरे बालकों के साथ खेलते हैं तो उन्हें अपने तथा दूसरों की क्षमताओं, योग्यताओं का आसानी से ज्ञान हो जाता है। खेल खेल में ही बालक दूसरों की तुलना में ही अपनी योग्यताओं का मूल्यांकन कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि उनमें क्या क्या कमियां हैं और उनको किस तरह व कैसे सुधारा जा सकता है। इस ज्ञान के आधार पर उनके भीतर वास्तविक आत्म प्रत्यय का विकास होता जाता है। परिणाम स्वरूप वे अपनी सूझ से जीवन में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों एवं परेशानियों को दूर कर लेते हैं तथा भविष्य को सुखद बना लेते हैं। ई बी हरलॉक के शब्दों में, इन प्ले चिल्ड्रन लर्न दियर एबिलिटीज आर एंड हाउ दे कंपेयर विद दोज ऑफ दियर प्लेमेट्स। दिस इनेबल देम टू डेवलप मोर डेफिनेट एंड रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ देमसेल्व्स। नंबर 9, शैक्षिक विकास में इन एजुकेशनल डेवलपमेंट। खेल का शैक्षिक विकास में अहम योगदान है। छोटे बालकों को अक्षर ज्ञान कराना एवं पढ़ाना लिखाना कितना मुश्किल काम है, इसे हम सभी जानते हैं, परंतु यही काम खेलों की सहायता से आसानी से संभव हो जाता है। खेल खेल में बालक अक्षर ज्ञान एवं पढ़ना लिखना सीख जाता है और पहाड़ा और गिनती याद कर लेता है। आकर्षक ढंग से पढ़ाने पर बालक गणितीय प्रश्नों को भी हल कर लेता है और छोटा मोटा जोड़ घटाव गुणा भाग आदि सीख जाता है। फ्रोबेल ने जो किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति का आविष्कार किया वह मुख्यतः खेल पर ही आधारित है। फ्रोबेल के अनुसार विद्यालय ऐसा होना चाहिए जहां बालक उन सभी प्रकार से हंसता हुआ पाया जाए जैसे वह खेल के मैदान में पाता है। मोंटेसरी में भी खिलौनों के माध्यम से बालकों को शिक्षा देने पर जोर दिया जाता है और एक दूसरी पद्धति का आविष्कार जिसे मोंटेसरी पद्धति, मोंटेसरी मेथड कहते हैं। ह्यूज एंड ह्यूज ने प्ले वे मेथड के संबंध में लिखा है, द मेथड दैट इनेबल्स चिल्ड्रन टू लर्न विद द सेम एंथेसिसम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दियर अपॉर्चुनिटीज प्ले इज ऑफन कॉल्ड प्ले वे मेथड। पृष्ठ संख्या 405। खेल खेल में बालक गिनती, अक्षर ज्ञान, पशु पक्षी के नाम, सब्जियों के नाम, महापुरुषों के नाम आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। खिलौनों से बालकों को रंग रूप, आकार, भार आदि के बारे में जानकारी मिल जाती है। वे खिलौनों के विभिन्न भागों को जल्दी से जोड़कर अपना संज्ञानात्मक एवं बौद्धिक विकास कर लेते हैं। इसके अलावा खिलौनों के माध्यम से बालक चीजों को व्यवस्थित एवं संग्रहित करना सीख जाते हैं, साथ ही उनमें चीजों को संभलकर अच्छी तरह से रखने की आदत का भी विकास हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि खेल खेल में बालक विभिन्न चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ ही अनेक हस्त कौशलों को सीख जाता है। पीएवीटी ने 1966 में अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बच्चे खेल के माध्यम से ही वास्तविक जगत एवं काल्पनिक जगत में भिन्नता करना सीख जाते हैं। जब बालक खेल कर आता है तो वह ताजगी महसूस करता है, फलतः उसे पाठ जल्दी से याद हो जाते हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि खेल का शैक्षिक विकास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर 10, अनुशासन के विकास में, इन द डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन। बालकों में अनुशासन का विकास करना एक अत्यंत ही मुश्किल एवं जटिल काम है, परंतु इस काम में खेल अत्यंत ही सुगम एवं आसान बना देता है। बालक खेल के माध्यम से अनुशासन में रहना सीख जाता है। जब वह खेल खेलते समय अपने साथियों की बात नहीं मानता और मनमाना व्यवहार करता है तो उसके साथी उसे अपने साथी खेलने से मना कर देते हैं। इतना ही नहीं, उसे अपने समूह से भी बहिष्कृत होना पड़ता है। अतः बालक बचपन से ही अनुशासित रहना सीख जाता है। नंबर 11, भाषा विकास में, इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। खेलते समय बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति खुलकर करते हैं और अपने दोस्तों के विचारों को भी सुनते हैं। अतः सुनने बोलने व विचारों के आदान प्रदान से उनका भाषा विकास होता है। जब बालक अपने साथियों के साथ खेलते हैं तथा भ्रष्ट या गलत उच्चारण करते हैं अथवा तुतलाते हैं तो उनके साथी उसे टोकते हैं। कुछ बालक ऐसी वाणी सुनकर हंस देते हैं और मजाक बना देते हैं। अतः बालक स्वतः ही शुद्ध उच्चारण करने के लिए प्रेरित होता है। इस प्रकार बालक शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना सीख जाता है। बालक जो खेलों के माध्यम से कविताएं, कहानियां, गिनती पहाड़ा आदि सिखाई जाती है, जिन्हें जोर जोर से बोलते हैं, उन्हें कविता गाकर सुनाने, चुटकुले सुनाने आदि के लिए कहा जाता है। इस प्रकार बार बार बोलने से उनकी भाषा परिष्कृत होती है और शब्द भंडार बढ़ता है। नंबर 12, अनुभव विकास में, इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। खेल से बालक अनुभवी होते हैं। खेलते समय बालक को अनेक प्रकार का अनुभव होता है। कुछ अनुभव अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं। जब बालक खेल खेल में गलती करता है अथवा दूसरे बालकों को कुछ भला बुरा कहता है तो दूसरे साथी इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तथा उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा एवं मारपीट हो जाती है। बालक के लिए यह अनुभव बुरा होता है, अतः बालक दोबारा इस प्रकार की हरकतें नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि झगड़ालू बालक को दूसरे बालक अपने साथ नहीं खिलाएंगे। इस प्रकार बालक स्वयं के अनुभव के से लड़ाई झगड़ा करना, व्यंग करना, गाली गलौज करना आदि बंद कर देता है। खेल के माध्यम से बालक जो अनुभव प्राप्त करते हैं वे उसके निजी होते हैं, मौलिक होते हैं, किसी के द्वारा प्रत्यारोपित या थोपे नहीं होते हैं। अतः बालक अनुभवी बनता है और यह अनुभव उसके भविष्य में काम आता है। पृष्ठ संख्या 406, नंबर 13, संवेगों के रचना में। वर्तमान युग तनाव एवं संघर्षों का युग है। बालक इससे अछूते नहीं है। आज हर जगह प्रतिस्पर्धा है। हर व्यक्ति एक दूसरे को मात देना चाहता है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो या खेल के मैदान हो। माता पिता भी चाहते हैं कि उनका बालक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करे। माता पिता की यह इच्छा बालकों के भीतर तनाव उत्पन्न करती है, क्योंकि उन्हें बार बार पढ़ने के लिए टोका जाता है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। सुनते सुनते बालक बोर हो जाता है और वह नकारात्मक संवेगों से घिर जाता है। खेल इन नकारात्मक संवेगों को दूर करता है। खेलते समय बालक को असीम आनंद एवं संतुष्टि मिलती है, जिससे उन्हें संवेगात्मक तनाव से मुक्ति मिल जाती है। खेलने के बाद बालक ताजगी महसूस करता है और फिर वह पूरे मन से पढ़ाई एवं गृह कार्य में जुट जाता है। वह जल्दी पाठ याद कर लेता है। इस प्रकार खेल संवेगों के रेचन में अमूल्य भूमिका निभाता है। नंबर 14, सामाजिक समायोजन में, इन सोशल एडजस्टमेंट। खेलों के द्वारा बालक सामाजिक समायोजन करना सीखता है। सबसे पहले बालक अपने खेल के साथियों के साथ समायोजित होना सीखता है, फिर वह समाज के अन्य लोगों के साथ घुलता मिलता है। 4 से 5 वर्ष का बालक जब पहली बार विद्यालय जाता है तो उसे डर लगता है, क्योंकि वहां उसे बालकों की विशाल भीड़ दिखाई देती है। वह धीरे धीरे उसका भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब बालक विद्यालय जाने से नहीं डरता, क्योंकि दूसरे बालक उसे स्वीकारते हैं। और उसके संग खेलते हैं। शिक्षक भी प्यार करते हैं और प्यार से पढ़ाते हैं, अतः विद्यालय में उसका समायोजन बेहतर ढंग से हो जाता है। नंबर 15, चिकित्सीय क्षेत्र में महत्व। खेलों का चिकित्सा विषयक मूल्यों में, विशेषकर मानसिक रोगों में निदान में तथा संवेगों के रेचन में अति महत्वपूर्ण स्थान है। 21वीं सदी का लगभग हर व्यक्ति, चाहे वह बालक हो, प्रौढ़ हो या वृद्ध, मानसिक तनावों से गुजर रहा है। बालक भी इससे अछूते नहीं है। पढ़ाई में प्रथम स्थान प्राप्त करने की लालसा, उच्च नौकरी पाने की आकांक्षा, माता पिता की इच्छाओं की पूर्ति, शिक्षक द्वारा दिया गया गृह कार्य, परिवार के सदस्यों के साथ सहयोग आदि की भावना बालकों में तनाव उत्पन्न करता है। इन तनावों में कुछ भी मुक्ति तो संवेगात्मक अभिव्यक्ति से हो जाती है, तो कुछ तनाव अंदर ही अंदर व्यक्ति को परेशान किए रहते हैं। साथ ही वे तनाव बालक के अचेतन मन में चले जाते हैं तथा विभिन्न प्रकार के मनोरोगों को जन्म देते हैं। इन दमित तनावों की मुक्ति खेल के माध्यम से हो जाती है, क्योंकि खेल तनाव मुक्ति का सबसे अच्छा एवं प्रभावशाली साधन है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि कुछ बालक वास्तविक जीवन में जो कुछ बनना चाहते हैं, उनका अभिव्यक्ति वे खेलों के माध्यम से करते हैं। जैसे मान लीजिए, बालक भविष्य में प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर या कलेक्टर बनना चाहता है, तो वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति नाटक के पात्र के रूप में भाग लेकर कर सकता है। इतना ही नहीं, बालक अपनी चिंताओं, भय, निराशाओं आदि का त्याग खेलों के माध्यम से भी करते हैं।